जिसको ज्ञान की कदर है उसको गुरु की कदर होगी, जिसको अपने आत्मा की कदर है अपने जीवन का कदर है उसको गुरु की कदर होगी। अब पशु होके भटकना है तो फिर कोई बात नहीं, समय निकल गया, वो आयुष्य का वो समय वापस नहीं आएगा। क्यों निश्चिंत आयुष्य नष्ट कर रहे हैं? रोज श्वासों श्वास में रोज एक एक दिन नाश हो रहा है। इसी जन्म में अपने आत्मदेव को नहीं जाना तो कब जाने? ऐसा ज्ञान मिलता है क्या कहीं? नाम जपत मंगल दिशा दशों, दशों दिशाओं में मंगलमय वातावरण होगा। तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरूं जू देह धरी द्वार। भगवान के नाम की मैं मणि रखता हूं, जैसे घर के उमरे पर चौकट पर दिया रखते तो कमरे में भी उजाला और बाहर भी उजाला, ऐसे ही नाम उच्चारण करने से। इसको बोलते वैखरी उच्चारण। चार प्रकार की वाणी होती है, मैं बोलूं और आप सुने तो वैखरी हो गया, मैं बोलूं और आप न सुने तो मध्यमा हो गया। होठों में होठ भी न हिले, कंठ में मंत्र का उच्चारण हो, पश्यंती हो गया। मंत्र के अर्थ में हृदय में स्पूर्णा हो तो परा हो गया। तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। धीरे धीरे परा में पहुंच जाएगा 40 दिन में। तो मेरे को तो बहुत लाभ हुआ, मैं वो 40 दिन का जो मेरा अनुष्ठान था उसमें जो मुझे मिला वो 40 साल में बांट बांट कर अभी रत्ती भर कम नहीं हुआ, ऐसा मिला मुझे। और इसीलिए मैं जहां जाता हूं तो लोग खिंच के आते खिंच के आते खिंच के आते। वशीकरण मंत्र प्रेम को, परमात्मा प्रेम की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा प्रसाद जा मति गति हो जाती, भले पहले का जीवन कैसा भी हो। नाम जपत मंगल दिशा दशों, नीच कर्म का त्याग कर दे, उद्देश्य ईश्वर की और गुरु की प्रसन्नता रख ले, फिर रुपया डॉलर मिलियन बिलियन ट्रिलियन से कुछ नहीं होता। और फिर खाना पीना आश्रम में है तो सात्विक बनता ही है, वरना अपने घर में प्याज और लहसुन खाने से ऊपर के केंद्रों की प्राण शक्ति और मन शक्ति नीचे आती। जिसको बौद्धिक कार्य है तो बुद्धि बढ़ाना है वो तामसी खुराक ना खाए। तामसी खुराक से मन और प्राण और मति नीचे के केंद्रों में आती, विकार उत्पन्न करती है, और मति का विकास की जो ऊर्जा है वो ऊपर कम जाती नीचे ज्यादा चली जाती। वैसे भी कोई चीज को ऊपर ले जाना है तो प्रयत्न चाहिए, नीचे आना है तो गिरती स्वभाव। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि नाविक था, उसने कहा अपने मुखिया को कि ये मेरा साथी भंवर में जाने से डरता है, लेकिन उस्ताद मैं तो मेरी नाव कई बार भंवर में डाल के वहां से घुमा के ले आता हूं। उस्ताद ने कहा वो डरता है और तू बड़ा निर्भीक है, शेखी बघारता, लेकिन तेरे से वो ज्यादा सियाना है। बोले कैसे? मैं तो भंवर में जाता हूं नाव को लेके, और ऐसी युक्ति से तिरछी पतवार घुमाता हूं कि बाहर निकल आता हूं। बोले मूर्ख, भंवर में जाता है पतवार घुमाता है निकल आता है, लेकिन कभी तेरी पतवार की या तेरी बुद्धि की या तेरी नाव की ऐसी वैसी हो जाए तो खोजा नहीं मिलेगा, करा कराया चौपट हो जाएगा। उद्देश्य ईश्वर का है, दिखते हम भगत हैं, फिर नीचे के केंद्रों में ले जाने वाला व्यवहार अथवा तबाही के रास्ते जाना या भंवर में जाना। तो बोले उस्ताद मैं नहीं गया कभी भंवर में, फंसा नहीं, जाता हूं निकल के आ जाता हूं। बोले तेरे से ज्यादा वो होशियार है, मेरे गुरुजी बताया करते थे। इसीलिए अगर ईश्वर के रास्ते जाना है अथवा अपनी उम्र लंबी रखनी है, आयुष्य तबाह नहीं करना है, तो फिर आकर्षण से बचे। आकर्षण को पोषण देना तबाही का रास्ता। अगर आकर्षण को पोषण देने वाले वातावरण में राजे महाराजे रहते तो उन्हें साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए घर बार छोड़कर चले गए। हम अगर घर में रहते, दर्शन पर्शन करते रहते, बातचीत करते रहते, तो हमारे को वो नहीं मिलता जो भी मिला है। मन से नहीं फिसले तो फिसलने वाले वातावरण से सतर्क रहे, सजग रहे। फिसले हैं ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन क्या पता भंवर में जाए कभी फिसल जाए। ईश्वर प्राप्ति कर लो फिर कोई बात नहीं। दही मत्ते ने मक्खन निकला नहीं तब तक लापरवाही ना कर। मक्खन निकले फिर छाछ में फेंक दो। मुक्तात्मा जीतात्मा परमात्मा समाहित। एक बार बराबर साधन भजन से अपने मनवा को मत कर। देह अध्यास से पंचकोशों से अपने को पार देख लो। फिर संसार में तो कबीर जी भी थे, वशिष्ठ को भी 100 बेटे थे, लेकिन फिर वो महापुरुष विकारी नहीं होते। उनके प्रारब्ध से बच्चों को जन्म दिए, लेकिन काम विकार के गुलाम नहीं होते, चाहे कबीर जी हो चाहे एकनाथ महाराज हो। वो संसार में रहते हुए दिखते हैं, लेकिन वो संसार में नहीं है, सरकने वाली चीजों में नहीं। उनके प्रति जो आदर करते वे बहुत बहुत फायदे में आ जाते, और उनके प्रति जो दोष दर्शन करते हैं वे अपना पुण्य नाश करके अशांति प्राप्त करते हैं। एकनाथ महाराज के लिए ग्रंथों में हमने सुना कि पैठण में एक बड़े उच्च कोटि के दंडी सन्यासी आए थे, और पूर्व काल में नगर सेठ की पत्नी थी, और नगर सेठ को एकाएक कुछ रोग ग्रस्त हो गए और मृत्यु की शरण चले गए। तो मुनि मोने ऐसा कुछ साजिश की कि बिचारी सेठानी कहीं किनारे, और वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करती थी। तो दंडी सन्यासी का सत्संग था चतुर्मास का, और वो भूतपूर्व सेठानी गई, बोले महाराज मेरे को बस हृदय में बस कसोटता हृदय कि हमने और हमारे सेठ जी ने मिलकर ये संकल्प किया था कि हम चार धाम की यात्रा करेंगे, और हजारों साधु ब्राह्मणों को हम भोजन कराएंगे। उनकी यात्रा रह गई, मेरा संकल्प रह गया, महाराज अभी तो मैं मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ, तो ये हमारा संकल्प अधूरा रह गया, अब हमारा क्या होगा, बहुत दुखी रहती हूँ। सन्यासी बड़े उच्च कोटि के, तो उन्होंने कहा मैया चिंता ना करो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बोले महाराज दो आदमी को जिमाने का मेरे पास नहीं है। बोले दो को नहीं, पूरे विश्व को तुम जिमा सकती हो। बोले बाबा वो समय था, अब नहीं है, सेठ जी चले गए और मैं कंगली हो गई। बोले नहीं मैया, तुम्हारे नगर में एकनाथ महाराज रहते, वे विश्वात्मा के साथ एक हुए, प्रणव की ओमकार की साधना करके इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, जीव ओम स्वरूप ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा में एक हुए। अगर एकनाथ महाराज अगर तुम्हारा भोजन स्वीकार कर ले, तो तुमने हजारों ब्राह्मणों को नहीं, लाखों लाखों लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को तुमने भोजन करा दिया, ऐसा तुमको पुण्य होगा, ऐसा वो विश्वात्मा है। जितात्मा है, विश्वात्मा है, प्रशांत आत्मा है, प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारी प्रतिष्ठिताः मन संयम मत चित्तो युक्त आसित मत पर। श्री कृष्ण जिसकी महिमा गाते उस पद में वो एकनाथ महाराज स्थित है। वो भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, अगर तुम्हारा स्वीकार कर लिया तो मैया मैया ने गांठ बांध ली और एकनाथ महाराज जी के पास आए। महाराज ने कहा मैया देखो वो मेरा जो बेटा है ना हरि पंडित वो रूठ के काशी चला गया था और मैं फिर उसकी माँ उसको याद करती थी रोती थी तो मुझे काशी जाना पड़ा उसे बुलाने के लिए। समाचार से नहीं आया, हट करके बैठ गया। तो मैं गया तब भी मेरे साथ आने को राजी नहीं, मेरे को बोले तुम वचन दो कि ब्राह्मण के सिवाय किसी के हाथ का नहीं खाओगे और वो भी मैं बनाऊंगा तब खाओगे तुम, तब भी मैं आता हूं नहीं तो मैं काशी में भला हूं। तुम तुम्हारा पैठण में मेरा क्षेत्र अलग है, आपका क्षेत्र अलग है। पुत्र पिता का सेवा का क्षेत्र अलग हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की शर्तबाजी तो ठीक नहीं बेटे। बोले नहीं नहीं कुछ भी हो, बस मैं पिताश्री और कुछ नहीं, मैं मेरा चाहे मतलब उसने हट पकड़ी। तो मैं अपने बेटे को वचन ले आया हूं हरि पंडित को कि मैं ब्राह्मण के सिवा किसी के हाथ का नहीं खाऊंगा और तुम बनाओगे तो खाऊंगा। तभी वो ही बनाता है। हाँ तुम एक उपाय है, तुम कच्चा सीधा हम तुम्हारे घर आए कच्चा सीधा देना और वो बना लेगा। बोले महाराज मेरा संकल्प था मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं। तो बोले देखो ऐसा करो कुछ कोई चीज बना लेना और हम भोजन करने बैठे और भोजन करते करते आधे से ज्यादा भोजन हो जाए उस समय एकाएक बावरी होकर भोली भगतानी होकर महाराज महाराज ये कर ऐसे करके हमारे दोनों पर तल में डाल देना। वो हरि पंडित रूठेगा उछलेगा कूदेगा वो फिर मैं संभाल लूंगा। देख लो संतों की युक्ति कितनी दया से परवश हो जाते। बेटे को वचन दिया और माई का भला करना है तो ये रास्ता निकाल दे। भाई ने जो कुछ मुंथाल मुंथाल जो बनाया होगा महाराज ये तो रह गया था। अरे हरि पंडित क्या बेटे भोजन से तो नहीं उठते, ये क्या कहा था भाई ये क्या बोले इसमें पानी तो नहीं डाला। बोले नहीं महाराज मैं मुंथाल में पानी कैसे डाल बेटे ये पक्की रसोई है, पक्की रसोई तो भगत की कभी ठाकुर जी को भी भोग लग जाता है। गलती तो हो गई मैया तुम्हारी लेकिन अब उन्होंने गलती की बेटा तू भी गलती करेगा पतल से उठेगा ये तो ठीक नहीं। भाई का संकल्प बेटे जैसे तैसे बेटे को बेटे कथा तो लंबी है। वो पतल उठाए तो फिर उनकी पतल पे रखे करे वो बड़ा गरम खून होता है। कुल मिला के वो भाई का मनोरथ पूरा हो गया और भाई के हृदय में संतोष हो। आपका कोई हितेशी अगर अशांति में है तो आपको उस समय कुछ न कुछ स्पंदन होता है महसूस होता है। तो हम भले शरीर से दूर हैं लेकिन भाव से जुड़े रहते हैं। ऐसे शरीर से दूर है विकारों के कारण भी कुभाव से जुड़ जाते हैं, सुभाव से भी जुड़ सकते हैं, कुभाव से भी जुड़ सकते हैं, मध्यम भाव से भी जुड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए, गुरु की निगरानी में रहना चाहिए और गुरु के सिद्धांत के अनुसार रहना चाहिए। तो मेरे गुरु जी की वो बात मुझे अभी भी याद है कि वो भंवर में जाता है निकल आता है लेकिन कभी फंस भी सकता है, अपन जाना ही नहीं। तो मनुष्य विश्वात्मा के साथ अपने जीवात्मा को एकाकार करने की योग्यता वाला, देखने सुनने सूंघने स्पर्श करने के इन पांच विकारों में से किसी विकार के आकर्षण से मन में भरा है तो तबाही कर लेता है। फिर चाहे मंदिर में हो, नरो नाम की कन्या ने तो देखते देखते ठाकुर जी में ये भाव किया कि आप वल्लभाचार्य का दूध कटोरा उठाकर पी सकते तो मेरा गिलास आप नहीं उठा सकते ठाकुर जी, मैं तो आपको दूध पिलाऊंगी। और वो लगी रही और ठाकुर जी के आगे रोज सेवा करते करते एक टक देखते देखते प्रार्थना करते करते वो दिन आ गए जब पानी 100 डिग्री पे होता है तो उखलने लग जाता है, ऐसे श्रद्धा और एकाग्रता दृढ़ता आ जाती है। तो फिर उस समय उसके बिना, उस परिस्थिति के बिना आप रह नहीं सकते, तो फिर वो घटना घटती है। अमूर्ति से प्रकाश पुंज और ठाकुर जी प्रकट हुए उठाया। अब ठाकुर जी तो वही के वही है, अभी भी है। वल्लभाचार्य के हाथ से दूध लेकर जो पीते थे ठाकुर जी, वो अभी भी है मंदिर में। और उस मंदिर के पुजारी थे वो, पूजा करते थे। वल्लभाचार्य के हाथ से तो ठाकुर जी ने दूध लेके पिया, नरो नाम की कन्या ने घर पे ठाकुर जी को प्रकट करके दूध पिलाया, हंसा नाम की एक युवती आती थी मंदिर में, और ठाकुर पुजारी की नजर, दामोदर लाल जी पुजारी का नाम था, उसकी नजर उस युवती पर थी। थोड़ी बातचीत करते करते ऐसा गिरा कि ठाकुर जी के श्री मुख के मंडल में जो कुछ मुकुट मुकुट लगाया चढ़ाया जाता था मस्तक, उसमें से 1 लाख रुपए का उस समय का हीरा वो लेके और उस लड़की को लेके भाग गया। अब भगवान तो वही के वही, उसी भगवान ने वल्लभाचार्य के हाथ से दूध लेकर पिया और उसी भगवान के मुकुट का हीरा चुरा कर वो, उसका कुछ होगा, मैंने कई बार बोला, अभी स्मृति नहीं। तो आदमी जो छोटे विचार को महत्व देता है त्यों धीरे 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 पतन के खाई में, और जो वफादारी से सेवा को महत्व देता है त्यों 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 उन्नति के शिखर पर चढ़ जाता है। अपनी योग्यता चाहे अभी कुछ भी ना हो, लेकिन जो योग्यता है ईश्वर की प्रीति के लिए, धर्म की सेवा रक्षा के लिए, उस योग्यता को ठीक ढंग से उपयोग में लाते योग्यता का विकास हो जाए। तो प्रशांत आत्मा होना है, अपने जीवन को बहुत, आप पैसा चला गया तो फिर कमा सकते, स्वास्थ्य चला गया तो फिर ठीक हो सकते, मित्र रूठ गया तो उसको मना सकते, मकान छूट गया तो दूसरा ले सकते हैं, गाड़ी निकल गई तो दूसरी गाड़ी में बैठ सकते हैं, लेकिन समय निकल गया, वो आयुष्य का वो समय वापस नहीं आएगा। इसलिए समय को आप कहां खो जाए, कहां बर्बाद कर रहे हैं, कहां आबाद कर रहे हैं, ध्यान रखना पड़े। विमुद्धा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, विमूढ़ लोक मुझ अंतरात्मा को नहीं देख सकते। यस्य ज्ञानमयं तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप होता है, सजागता रहे तो एक पहर प्रणव का जप, एक पहर शास्त्र अध्ययन, एक पहर सतगुरु की सेवा सानिध्य और एक पहर ध्यान समाधि, अगर ऐसा सतत हो जाए तो साक्षात्कार, तो ईश्वर प्राप्ति तो घर की चीज हो जाती। जिसको जो माहौल मिलता है, सुविधा मिलती है, अधिकार मिलता है, उसका सदुपयोग नहीं करता, वो वहां से गिर जाता है, पतित हो जाएगा। मेरे को गुरु का आश्रम मिला, अगर मैं गुरु के आश्रम के माहौल का सदुपयोग नहीं करता तो मैं गिर जाता, सदुपयोग किया तो कई गुना मुझे फायदा मिला। तो आपको जो पद मिला है, जो सेवा मिली है, जो वातावरण मिला है, जो माहौल मिला है, उसका आप अधिकार का दुरुपयोग ना करें। संस्था की या सरकार की या किसी भी साहब के आप उदारता का दुरुपयोग ना करें, आप समय का और व्यवहार का सदुपयोग करें। सदुपयोग करेंगे तो आपकी सदगति उन्नति होगी, दुरुपयोग करेंगे तो आपकी ही दुर्गति होगी। आपको जो मिला है उसका दुरुपयोग ना हो। अरे पढ़ाए ज्यादा थोड़ा गिर गया तो क्या, नहीं। घनश्याम बिरला ने धड़ाक से दिवाली की रात को अपने मंगनी किए हुए बेटे को ऐसा थप्पड़ ठोकी कि बेटे का ससुरा देखते ही रह गया। बोले क्या कर रहे हैं, बोले दिया जलाते जलाते एक दिया सली बुझ गई, दूसरी तीसरी जला रहा है। बोले तो आपको क्या टोटा है दिवाली की रात में? टोटा नहीं, लेकिन जो दिया सलाई नहीं संभाल सकता वो मेरा इतना कैसे संभालेगा? तो वस्तु का दुरुपयोग ना हो, समय का दुरुपयोग ना हो, विचारों का दुरुपयोग ना हो, इसी का नाम है सजगता। रुपया गिर गया तो बड़ी बात नहीं, स्वास्थ्य गिर गया तो बड़ी बात नहीं, गुरु के हृदय से नहीं गिरना चाहिए, भगवत कृपा से नहीं गिरना चाहिए, भगवत प्रसाद या भगवान की कृपा होती है तभी तत्वजा मति बनती। और तत्वजा मति बनाने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा अडिग रहती। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावई वेद। और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो अमेरिका चले गए तो क्या हो जाएगा? अमेरिका में तो सब मार ही रहे हैं जकर, कितनी अशांति है, कितना क्या है, बाहर से टिप टाप अंदर से कितना खोखलापन है। तुमको तो क्या मिलेगा? 12 घंटे 8 घंटे तो एकदम हार्ड वर्क और 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, 12-13 घंटा फें आके पढ़ते हो, फ्रीज में रखा हुआ बना बनाया भोजन बेचारे गरम गरम करके खाते, ऐसे थक के आते हैं जो हार्ड वर्क है वहां। और फिर छुट्टी के दिन घास काटो और इतने टैक्स और ये वो कि कमाते कमाते जिंदगी पूरी हो जाए, जो लाख 2 लाख डॉलर इकट्ठे हुए या 10 लाख डॉलर, आखिर क्या? शांति चली गई, आध्यात्मिकता चली गई, सात्विकता चली गई, तो तुमने क्या फायदा किया? आए थे पैसा पाने को लेकिन पूत खो बैठे, बच्चे बच्चियों का स्वभाव विश्वास जनरेशन डाउन। तो भारत देश का सदुपयोग करे और मनुष्य जन्म का सदुपयोग करे, मति का सदुपयोग करे। सदुपयोग करोगे तो सत स्वरूप ईश्वर को पाओगे, वो सत्स्वरूप ईश्वर अपना आत्मा होकर बैठा है, वो चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, सुखरूप है। अगर इसी जन्म में नहीं पाया उसको तो कब पाएंगे? इसी जन्म में अपने आत्मदेव को नहीं जाना तो कब जानेंगे? ही तो कई जन्मों में करते रहे। अब की बिछड़ी कब मिले, जुदा जाए पड़ेगी दूर। हे मती, अभी जो तू परमात्मा से बिछड़ी तो फिर कब मिलेगी? भैंस के आगे बापू आ जाए तो क्या कर देगी? मनुष्य ही संत को पहचान सकता, और मनुष्य शरीर ही नहीं, मनुष्यता का सद्गुण हो तब संत को पहचानेगा। शंकराचार्य ने कहा एतदि त्रयम् त्रयम् दुर्लभम्, मनुष्यत्व मनुष्य का शरीर तो मिल जाए लेकिन मनुष्यत्व, जैसे सुई 2 कपड़ों को जोड़ती है ऐसे आत्मा परमात्मा को जोड़ने की, मुक्त होने की जो भावना है तभी आदमी मनुष्य है, नहीं तो द्विपाद पशु है। हमारे को तो कितना आश्रम से भगाने के लिए हरीफों ने कितना जोर मारा, लेकिन गुरुजी हमको चाहते थे और हम गुरुजी को चाहते। हरीफ तो कोई नहीं चाहता था कि हम टिके रहे, हरीफ तो क्या सब, हम तो उस वो तो भगवान जानते लेकिन हम डटे रहे। डटे रहे तो फिर हमको क्या मिला? वो हरीफ क्या जाने बेचारा। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपनी करनी से हम गुरु के हृदय के निकट होते हैं, गुरु के महान प्रसाद के निकट होते हैं। और अपनी मनमानी से फिर हम दूर क्यों गिरे? जब गुरु देना चाहते तो हम अभागे क्यों बने? मंदा सुमंद मतयाह मंद भाग्या उपद्रता। एक तो मंदमती है, भाग्य भी मंद है और उपद्रवी है, लड़ाना झगड़ाना भिड़ाना करना ये उपद्रव। उपद्रवी को ईश्वर प्राप्ति की रुचि नहीं होती, किसी के प्रति किसी को भेड़ाना ये उपद्रव। मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या उपद्रता भागवत में है। समझो कलयुग उन पर हावी, एक दूसरे को भिड़ाते ना तो कलयुग उन पर हावी उपद्रव करते। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कई बार एकाएक गुरुजी को तो पता भी नहीं बापू की आज्ञा है, ऐसा करके निकाला और हम तो गए। और फिर 6 महीने के बाद आना हुआ तब तो हमने दूसरे ने कहा नहीं बापू के तो आज्ञा नहीं थी, इसीलिए ऐसा बनावट करके बारिश पड़ रही है सामान बंधवाया और भीगते भीगते गए पहाड़ से नीचे उतर के। बापू की आज्ञा है, बापू की आज्ञा है, ऐसा करके न जाने क्या क्या कर देते। बापू जी की आज्ञा है, बापू जी ऐसा ऐसा ऐसा। अब बापू जी से तो जरा जरा बात तो पूछने का मर्यादा रखते थे, ऐसा करके खूब खूब परेशान करते। फिर भी हम गुरु की शरण नहीं छोड़े, क्योंकि हमें हमारे जीवन का अगर कदर है, जिसको ज्ञान की कदर है उसको गुरु की कदर होगी, जिसको अपने आत्मा की कदर है अपने जीवन का कदर है उसको गुरु की कदर होगी, जिसको मनुष्यता की कदर है उसको गुरु की कदर होगी। अब पशु होके भटकना है तो फिर कोई बात नहीं, कई जन्मों में माता के गर्भ में लटकना हो, गर्भ ना मिले तो नाली में बहने की तैयारी हो, तो फिर गुरु से जो भी करते करो। लेकिन जिसको अपने मनुष्य जीवन की कदर है वो गुरु की कदर करे बिना नहीं रहेगा। तो आज ये शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संसर्ग एतदिक त्रयम दुर्लभम मनुष्य लोके। एक तो मनुष्य शरीर है लेकिन मनुष्यता का सद्गुण है। मुमुक्षत्वम मोक्ष की इच्छा, जैसे किसी ने हमारी गर्दन पानी में दबोच दी तो हम उस समय नहीं सोचते कि जलेबी खाएं या पूरी खाएं या पैसा इकट्ठा करें या इधर जाए, बाहर निकले या बाहर निकले। नरेंद्र बोलते थे कब मिलेंगे ईश्वर, रामकृष्ण बोले मिलेंगे, आखिर देखा बहुत हो गए तो बोले चलो गंगा जी में, और नरेंद्र की बोची पकड़ के गंगा में दबोच रखा, जितनी देर सह सकते थे उतना दबोचा फिर छोड़ा। बोले कैसा क्या याद आया, कुछ खाने का पीने का किसी से मिलने का गप लगाने का भिड़ाने का कुछ याद आया? बोले नहीं, बाहर निकले। दूसरी बार उससे कुछ सेकंड ज्यादा दबोचा, तीसरी बार उससे भी ज्यादा। बोले तीनों बार में क्या क्या विचार में आया? बोले कुछ नहीं, बाहर निकलूं बाहर निकलूं। बोले ऐसे ये जन्म मरण से दुखदायी संसार से बाहर निकालने की ऐसी तीव्रता होगी उसी दिन ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। हम अनुष्ठान करते तो रात का कभी 12-1 बज जाए अपना नियम पूरा करते, कभी कभी तो रात को बीच बीच रात में जगते कैसे मिले ईश्वर क्या ऐसा तड़पते थे। क्यों निश्चिंत आयुष्य नष्ट कर रहे हैं, रोज श्वासोश्वास में रोज एक एक दिन नाश हो रहा है। पैसा गया तो आ सकता है, स्वास्थ्य गया तो हो सकता है, लेकिन बीता हुआ समय गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो शरीर से बीमार होता है कोई आदमी, मन से बीमार होता है कोई, बुद्धि से बीमार हो जाता है। बुद्धि से बीमार होना तो बड़ी तबाही, गलत निर्णय करना ही बौद्धिक बीमारी, गलत चिंतन करना ये मानसिक बीमारी, और गलत खान पान करना ये शारीरिक बीमारी। ये मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, देख लो कैसा कैसा आता, बिल्कुल फिट है। आप आत्म साक्षात्कार कर लो फिर पोथियां पढ़कर आप ज्ञान नहीं लाओगे, आपका ज्ञान स्वरूप से ही ज्ञान छलकेगा। टॉनिक लेकर आप स्वास्थ्य नहीं लाओगे, आपकी अपनी आत्म शांति से ही स्वास्थ्य के कण उभरते रहे। रोक और पोप करके सत्यानाश करके खुशियां नहीं लोगे, अपने आप में तुम तृप्त रहोगे, चाहे शांत सुख हो चाहे हर्ष उल्लास विनोद का सुख हो, चाहे ज्ञान का सुख हो, चाहे भक्ति का सुख हो, चाहे योग का सुख हो, लेकिन आपके अपने आत्मा के ही अनेक रूप का सुख आएगा। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, आंधी तूफान करने वाले थक जाए आपको दुखी नहीं कर सकते। दुखी करने वाले दुखी होंगे अच्छी तरह से, आप दुखी नहीं हो सकते। आपको सताने वाले सताए जाएंगे प्रकृति के द्वारा, लेकिन आप नहीं सताए, क्योंकि आपने अपना निर्णय ऊंचा किया है, आपने अपने गुरु से वफादारी की है, अपने धर्म से वफादारी की है, अपने ईश्वर से वफादारी की है। आपको डरने की जरूरत नहीं। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर जी कहते हैं जिस मौत से थारी दुनिया को खौफ, उस मौत से भी मैं नहीं डरता। पिछले 2000 वर्ष से हिंदू साधु संतों की निंदा का परंपरा चली आ रही, नानक जी कबीर जी। जब सनातन धर्म के बाद दूसरे धर्म बने ना, उन्होंने फिर हिंदुओं में से तो दूसरों को घसीटा। फिर भी अभी हिंदू धर्म का इतना महत्व है, इतनी साधना की सच्चाई है कि घंटों भर चुप बैठे हो शांति में, ऐसा दूसरी जगह बताओ कि नहीं मिलता है। मैंने तो नहीं देखा दुनिया में, देश विदेश घूमा, मैंने नहीं देखा इतना शांति का धर्म लाभ करते और इतना ऊंचा तात्विक सात्विक सत्संग। हे राम जी, जो आत्मज्ञान का सत्संग देते वो ज्ञानवान का भली प्रकार उपकार मानना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनका बड़ा उपकार है। और जो मुफ्त में सत्संग सुनते हैं, लाइट पंखे सुविधा लेते हैं या टुकड़ा खाते हैं और फिर अगर थोड़ा भी 19-20 सोचते हैं, उनको बड़ा भारी पाप लगेगा। उनको तो योग वशिष्ठ में कुत्ते वाली कथा पढ़ लेनी चाहिए अथवा काली कमली वाले बाबा की कथा। यज्ञ याग तप व्रत वैदिक कर्म से भी सत्संग की ऊंचाई की बराबरी नहीं कर सकते। राजे महाराजे मुकुलपुर के बाबा जीवन मुक्त थे और वहां का राजा 1942 की घटना है, अखंडानंद जी के साहित्य में पढ़ लेना। वो सत्संगियों के बीच बाबा बैठे थे और राजा ने पूछा कि महाराज आत्मज्ञानी गुरु का क्या पहचान है, पूर्ण पुरुष की क्या पहचान है। ए बहरे इधर आना, ब्रह्मचारी इधर आना। ए राजा के बच्चे का कान पकड़ के बाहर निकाल दे। ब्रह्मचारी ने बाहर निकाल दी। लोगों को आश्चर्य हुआ। सुबह बाबा घूमने गए तो मोकलपुर नरेश ठंड में ठुठरा प्रणाम करता है, बोले अभी तक रात भर यहीं थे। बोले हाँ। बोले मिल गया ना तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, मिल गया ना, तुमने सवाल ही ऐसा किया था इसलिए मुझे आज्ञा करनी पड़ी। तुमने सवाल किया कि जीवन मुक्त ब्रह्मवेता के क्या पहचान है, तो तुम्हारे जैसे राजा की भी ऐसी तैसी कर दे। और तुम्हारी पहचाने के तुम सत शिष्य हो, इतनी डांट के बाद भी निकाल दिया और राजा थे गए नहीं, दुर्भाव नहीं आया। अब गुरु का द्वार छोड़कर भागने का है तो आपके कर्मों की हीनता है, चाहे अभी दिखे चाहे न दिखे, कुछ न कुछ दुष्ट कर्म है। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता, सेवा से जी कतराए, आध्यात्मिकता से जी कतराए तो आपका भविष्य अंधकार में है। आध्यात्मिकता से आप किनारा कर रहे हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है, पक्का लिख लो। और आध्यात्मिकता के तरफ सचमुच में झुकाव है तो भविष्य आपका प्रकाशमय है, लिख लो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये कर्म का सिद्धांत। मेरे को कि इतना ही लोग गुरु के द्वार से धकेलते थे, हम डटे रहे तो मेरा उस समय से भी भविष्य उज्ज्वल ही है। मेरे को भाई खींचता था, पत्नी खींचती थी, माँ खींचती थी, मित्र खींचते थे, सारे खींचते थे, सारे के सारे, और वहां से भी धकेलते थे, फिर भी मैं डटा रहा। मेरा भविष्य उज्ज्वल हो गया और इसके बाद भी उज्ज्वल ही रहेगा। मेरा बालवा कौन है भाई, क्यों? मैंने अपने सदगुरु से निभाई, धर्म से निभाई है, संस्कृति से निभाई है। तो मेरे से जो गद्दारी करेगा उसको प्रकृति ठोकेगी, मेरे को क्या है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने गाली दी तो मेरे कान खराब हुए, तुम्हारी जीभ खराब हुई, मेरा मन खराब हुआ, तुम्हारा मन खराब हुआ, लेकिन तत्व दोनों का जो का त्यों रहा है, उसने गाली दी, मेरे कान खराब हुए, उसकी जीभ और मन खराब हुआ, लेकिन उसका तत्व और मेरा तत्व खराब नहीं हुआ, ऐसा बात है। उसका मैंपना जो है शुद्ध, वो वैसे का वैसा है। ऐसा ज्ञान मिलता है क्या कहीं? वो गाड़ी चलाया, उसको एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, सिर फूट गया, और ट्रीटमेंट में पैसा खराब हुआ, तबीयत खराब हुई, लेकिन उसका तत्व झुका जो है, आपका झुका जो कुछ नहीं खराब हुआ। हाँ, वो गया और लॉटरी लग गया, 10 करोड़ रुपया मिल गया, उसका तत्व भी वैसे का वैसा रहा, कुछ बड़ा नहीं। आत्मदेव ऐसा है, तस्य तुलना के न जायते। ऐसे आत्मज्ञान की नजीक ही में आकर फिर जाए इधर उधर तो तबाही है तबाही। दोष दर्शन का पाप बुद्धि में घुसता है तो गुरुद्वार पे रहने नहीं देता। दोष दर्शन अगर दिख जाए बुद्धि में, किसी के प्रति दोष दर्शन आ जाए, गुरुद्वार पे रह नहीं सकेगा ज्यादा दिन, पाप ले भागेगा तुमको। निस्तेज हो जाता आदमी, दोष दर्शन वाला निस्तेज हो जाएगा, फिर हाय फिल्म सीडी तू सुख दे, हाय निंदा तू सुख दे, हाय गपशप तू सुख दे। कैसे अभागी लोग गपशप से सुख ढूंढते, निंदा से सुख ढूंढते, फिल्म की सीडी से सुख ढूंढते, बाहर का चटोरेपन से सुख ढूंढते, तो कितने कंगले हो गए। वो कंगला है जो बाहर से सुख अंदर भरता है, वो शंशा जो अंदर से परमात्मा सुख से बाहर के वातावरण को मधुर करता है। तो मीरा अमीर है, शबरी अमीर है, रहीदास अमीर है, जनक अमीर है, सदना अमीर है, और भी कई अमीर आए धरती पर जो तत्व में बस ईश्वर में। अभी तुम्हें कितना पुण्य हो रहा है, कितना ज्ञान बढ़ रहा है, कितना जीवन उन्नत हो रहा है, उसका कितना फल हो रहा है, इसको कोई तोलने वाली तराजू संसार में पैदा नहीं हुई। और ब्रह्मा जी भी तराजू बनाएंगे तो तराजू टूट जाएगी, इतना लाभ हो रहा है तत्व ज्ञान की शांति से सुनने से। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख शांति के सुख के आगे दूसरे सुख कुछ भी नहीं। ये कितना पुण्य हो रहा है, कितना भविष्य उज्ज्वल हो रहा है।